بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه. دنیا میں دو طبقے ایسے ہیں جن پر ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر تہذیب میں، ہر حکومت میں، ہر ملک میں ظلم ہوتا چلا رہا ہے. ایک تو خواتین کا طبقہ ہے، عورت کمزور سمجھی گئی ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اس خاتون پر ظلم نہ ہوا. یہود نے تو یہاں تک کہا کہ ساری خرابیوں کی جڑ اور ساری بربادیوں کی ماں یہی عورت، یہی ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا. ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں کی تہذیب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کو جینے کا، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، ستی ہونا پڑتا تھا، شوہر کی لاش پر جلنا پڑتا تھا. یہ تہذیب تھی وہاں، میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. اسلام جب آیا تو اس وقت عرب میں یہ حال تھا کہ سامان جس طرح میراث میں تقسیم ہوتا تھا، اس طرح باپ کی بیویاں میراث کی طرح سامان میں تقسیم ہو جاتی تھیں. لڑکیاں زندہ نہیں رہ پاتی تھیں، انہیں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، کوئی حق دینے کا نہیں تھا، میراث کا تو سوال ہی نہیں تھا، خود میراث تھی نہیں. ہر دور میں ظلم ہوتا رہا ہے خواتین کے ساتھ. ان کو میراث ملنے کا تو دور دور تک کہیں بھی کہیں نہیں، اور غالباً کسی تہذیب میں نہیں رہا. ہندو جو ہماری تہذیب ہے اس میں تو عورت کا کوئی میراث میں حصہ ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں. اس سے پہلے جو تہذیبیں گزری ہیں ان میں بھی اسے حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام آیا تو سب سے پہلی بار اس نے عورت کا میراث میں حصہ بتا. اور یہ بہت بڑا انقلاب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے منظور کیا، قبول کیا، اور اس حد تک قبول کیا کہ ایک جنگ میں جب لڑکیاں گرفتار ہو کر آئیں، چھوٹی بچیاں آئیں جنگ میں آئیں، تو ان کی پرورش کے لیے صحابہ میں آپس میں جنگ ہو گئی. ایک کہتا تھا میں پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں پرورش کروں گا. ایک اپنا رشتہ جتاتا تھا، دوسرا اپنا رشتہ جتاتا تھا. اور یہ صرف اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان سے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، خوشگوار نکاح کر دیا، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو گئے اس طرح یہ دو انگلیاں. اس حرص میں، اس آرزو میں، اس تمنا میں بیٹیوں کی پرورش کی فکر ہو گئی. لوگ بیٹیوں کی پرورش کرنے لگے، خواتین کے حق دیے جاتے. مدینے میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ کسی گھر میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. ایک دن آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے خواتین کا اتنا حق بتایا ہے، یہ بڑی جری ہو گئی ہے، بڑی موزور ہو گئی ہے، جواب دینے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے کہ تھوڑی بہت تنبیہ کر لیا گا. یہ رات تھی کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں عورت پر مار نہ پڑی. برسوں کے چھوٹے رہنے بھی تھے روکے بھی تھے, ذرا سی یاد ملی موقع ملا. صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو عورتوں نے گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ ہمارا ساتھ یہ سلوک ہوا. تو آپ منبر پر چڑھے, مسلمانوں کو جمع کیا اور کیا عجیب لفظ فرمائے. کہا جس گھر میں عورت پر مار پڑتی ہو وہ گھر اچھا نہیں. تو یہ الفاظ اس طرح دل میں اترے صحابہ کرام کے کہ ہمارا گھر اچھا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا. مدینے میں اس کے بعد مدینے کے کسی گھر میں کسی نے کبھی کسی عورت پر پھر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ اسلام ہے. یہ سندھ تھی عورت تھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. دوسرا طبقہ جس پر بہت ظلم ہوا ہر دور میں ہوا, لڑکی ہو یا لڑکا یتیم ہو جائے, باپ نہ رہے, سربراہ نہ رہے, ہمیشہ اس کا مال لوٹا رہا. اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد اس دور میں بھی ظلم ہوا, بعد میں بھی ہوتا رہا. اور چچا نے, بھائیوں نے, بھتیجوں نے یتیم بچوں کو مارنے کا قبضہ کیا. خاتونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, خواتین کے ساتھ بھی یہی ہوا, یتیموں کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسلام میں ان دونوں کے حقوق متعین حقوق. پہلی بات تو یہ کہی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو عظمت والا کرامت والا بنایا. اور انسان جس طرح مرد ہے ٹھیک اسی طرح عورت. یہ کسی کی دین نہیں ہے, کسی کا احسان نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہی ہے ایسے کرامت والا, اس لیے کرامت کرنی پڑے گی, عزت کرنی پڑے گی. اس دور میں یہ بات آج تو آپ کہنا آسان ہے, لیکن اس دور میں, جس دور میں عورت کسی حیثیت سے مانی نہیں جاتی تھی, اس دور میں انقلابی ہدایات آتی ہیں. یتیم کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں تھوڑا ہی عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرا کہ پھر وہی سب کچھ ہونے لگا. حد یہ ہے کہ چند صدیوں کے بعد پھر یہی ہوا, کہیں مشترک خاندان کی جائیداد ہم مشترک خاندان کی ہونے لگی, لڑکی کو حصہ کسی طرح مل جائے. باپ وڈیروں کے یہاں, جاگیرداروں کے یہاں لڑکیوں کی شادیاں, بہنوں کی شادیاں قرآن شریف سے کر دی جاتی ہیں کہ جائیداد باہر مل جائے, داماد کو نہ مل جائے. اور جن لوگوں میں نماز روزے کی بڑی پابندی تھی, اب یہ ہے کہ پٹھانوں کے وہ قبیلے جہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک بات ہو جائے قتل ہو جاتے تھے, وہاں بھی بیٹی کی میراث نہیں ملے, بہن کی میراث نہیں ملے. مختلف طریقے سوچے گئے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پہلی بار خواتین کے میراث میں متعین حصے بیان کیے, اور یہ کہا کہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکے کے دو حصے ہوں گے, لڑکی کا ایک حصہ وہی دینا پڑے گا. اور اس کی اہمیت اور اس پر زور اس قدر زیادہ دیا گیا کہ شاید اتنی سخت تنبیہ, اتنی سخت وعید اور اتنی سخت سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے किसी अमल की बयान नहीं की सिवाय सूद के। सूद के बाद दूसरे दर्जे की चीज जो है वो मीरास है। फरमाया गया ममैया सल्लाह रसूल अब मीरास के अहकाम बयान करने के बाद फरमाया गया और जिसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की वह तो आपका हुदूद हूं और इन हुदूद को पामाल किया जो अल्लाह ने बयान किया मीरास के लिए हुदूद ये तो खिल हो नारा खारिज किया उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। वलहू अजाबुम नहीं और उसे रुस्वा खुद अजाब दिया जाएगा इसलिए कि उसने दुनिया में अल्लाह के दीन को रुस्वा किया दीन के अहकाम कुछ थे इसको पामाल किया रुस्वा रुस्वा खुद अजाब से दिया ठीक जिस तरह ये खवातीन के हुकूम बयान किए गए मीरास के किसी तरह बयान किए गए यतामा के हुकूम और यतामा के हुकूम बयान करने के बाद इनके हुकूक की हिफाजत करो बच्चियां हो उनकी माओ से शादी कर लो एक शादी करो दो करो तीन करो चार तक करो लेकिन इनकी हिफाजत करो इनके बाद क्या और इसकी भी सजा इतनी सख्त बयान की गई है इन्नल लज़ीना याकुलूना वालिद तावा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा इसने जुल्म करके यतामा के हुकूक मारे यतीम का माल खाया इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वो अपने पेटों में अंगारे जहन्नम से भर रहे इससे अलावा सख्त बात क्या हो। इसी जैल में अल्लाह ताला ने औरत पर एक और एहसान किया है जो मगरिब के नजरिए के मुताबिक जुल्म है लेकिन अल्लाह ताला ने एक एहसान किया है एहसान ये किया है कि इजाजत दी है कि एक शादी कर सकते हो दो कर सकते हो तीन कर सकते हो चार कर सकते हो जो मतलूब हो गई आज गुना हो गया है। हद यह है कि आप न्यूयॉर्क की अदालत में अगर दूसरा निकाह करके पहुंच जाएं तो सजा मिल जाएगी। हां अगर ये कह दें कि मैंने नाजायज तालुक रखा था तो ठीक है उस पर कोई काम नहीं है। ये जो जुर्म है ये अल्लाह ताला ने औरत पर एहसान किया। वजह यह है कि जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं उनमें मर्द मारे जाते हैं खवातीन रह जाती हैं उन्हें घर अगर मिल सकता है सारा मिल सकता है सरपरस्ती मिल सकती है तो इसी तरह मिल सकती है कि इसकी इजाजत जारी है और हमें फख्र से यह कहना चाहिए कि इजाजत अंदाज ही है और उससे ज्यादा नफ्सियात इंसान की जानने वाला फितरत का जानने वाला इंसान की जरूरतों को जानने वाला कोई अलबत्ता ये बात भी साफ साफ अल्लाह ताला ने कही है कि महज इस परस्ती के लिए नहीं तुम्हें आदर पालन करना पड़ेगा इंसाफ करना पड़ेगा और अपनी जरूरत का लिहाज करना पड़ेगा तब शादी जो एक से ज्यादा कर सको वह सिर्फ तुम अल्लाह ताला है और अगर तुम्हें यह खतरा हो कि तुम आदर नहीं कर सकोगे इंसाफ नहीं कर सकोगे तो वाहिदा एक ही गलत इजाजत तो है लेकिन जो शख्स एक से ज्यादा निकाह भी करता है और आदम नहीं करता वो अल्लाह के साथ दगाबाजी करता है उसकी इजाजत से फायदा तो उठाता है लेकिन जो शर्तें उसने लगाई है वो पूरी नहीं करता धोखा देता है अल्लाह ने इसी शर्त के साथ दिया और आप कभी और करेंगे तन्हाई में कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां मर्दों में ये चलन न हो ये रिवाज न हो कि वो एक बीवी पर इत्तेफाक नहीं करते। बहुत सी सोसाइटी में बहुत से मर्द ऐसे होते हैं जो नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं। चुनांचे भी जो सर्वे हुआ था तीन साल पहले हिंदुस्तान का तो हमारे बारे में तो ये कहा जाता है ना कि भाई मुसलमान चाचा शादियां करते हैं मालूम ये हुआ कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम है जिनके यहां एक सिराए बीवियां हैं, हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है जिनके यहां एक सिराए बीवियां हैं। और फिर नाजायज ताल्लुकात की अलग बात है, अलग है। और यहां भी इस मुल्क में भी आप आजाद हैं जितनों से चाहे ताल्लुकात हैं, अलबत्ता कानूनी तौर पर एक ही निकाल है, यह हयाई की गलत। दूसरी बात यह है कि जब आप निकाह पर गैर फितरी पाबंदियां करेंगे तो निकाह करना मुश्किल हो जाएगा और गुनाह करना आसान हो जाएगा। चुना कि हर सोसाइटी में आप देखें, हिंदुस्तान में आप घूमें फिरें, इस वक्त निकाह करना बहुत दुश्वार का मुश्किल का, लेकिन बेहयाई के काम करना बहुत आसान हो गया। चुनाचे हैदराबाद ही में सिर्फ हजारों लड़कियां आना खतरा बैठी हुई, हजारों 36,000 इतनी तादाद है जिनके निकाह नहीं हो रहे हैं, गहेज नहीं है, जरूरत नहीं है, घोड़ा जोड़ा नहीं है, वहां घोड़ा जोड़ा कहते हैं इसे नहीं है, शादियां नहीं हो रही। अगर ये तैयार होते इस्लामी अंदाज होता तो बात दूसरी होती। और अब सूरत हाल यह है मुसलमानों में, अच्छे तबके में मुसलमानों में भी सूरत हाल यह है कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है तो लोग बयान करते हैं सोसाइटी में उसने दूसरी शादी की, वो घर वाले भी, रिश्तेदार भी, या रिश्वाफावा भी इसे एक बुराई समझने लगे, उसके तस्करे इसी तरह होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। तो अल्लाह ताला जो फितरत को जानने वाला है, ये औरत पर एहसान था कि किसी वक्त वो बगैर सरपरस्ती के न रहे, बगैर साये के न रहे, जरूरतें उसकी पूरी होती रहे। और अगर कहीं मौका ऐसा आ जाए, खुदा ना खास्ता कभी कभी आते हैं, वरना आमतौर पर तो एक ही शादी करता है इंसान, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो ये बेसरपरस्ती के न रहे। इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान में बहुत अक्सर है, ना तो खुदा लड़कियां बगैर शादीशुदा लड़कियां बहुत बैठी हुई। फिर एक बात और अल्लाह ताला ने कही है, वो किसी और सूरत में है लेकिन भाला अभी बात ध्यान में लाना चाहेंगे, अभी मैं इसमें ही बयान करूंगा। एक और बात अल्लाह ताला ने कही है कि किसी घर में या खानदान में या माशरे में बगैर निकाह के कोई लड़का हो या लड़की, हम तो ये समझते हैं कि जिसकी लड़की है वो फिक्र करे, जिसका लड़का है वो फिक्र करे। अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, वान के हुर गया मामिनकुम, तुम सब पाबंद हो इसके बगैर निकाह के न कोई लड़का रहने दो न लड़की। मोहल्ले में एक शख्स के यहां लड़की है, मोहल्ले वाले सब जिम्मेदार हैं, सोसाइटी पूरी जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, उस लड़की का निकाह करा है, फिक्र करें हम इस फिक्र से बेनियाज हैं, जिसकी लड़की है वो जाने वो भुगते, ये इस्लाम ने बताया। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह मीरास का कानून बयान करने के बाद फिर बेहयाई से किस तरह बचाया जाए समाज को, निकाह पर जोर दिया और साथ साथ ये कहा कि अगर किसी से बेहयाई हो जाए तो उसकी सख्त सजा दी जाए। और आपने देखा कि बेहयाई की सजा इस्लाम ने इतनी सख्त मुकर्रर की है कि रूंगटे खड़े हो जाते, पत्थर मार मार कर उस शख्स को हरा कर जिससे बदकारी की, बदतरीन सजा, सख्तरीन सजा। इसलिए कि सोसाइटी जब तक इन गुनाहों से पाक ना हो वो शरीफ इंसान की सोसाइटी नहीं हो सकती, इसलिए इस पर जोर दिया गया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ बताया है किन खवातीन से निकाह हराम है, किन मर्दों से निकाह हराम है, वो बहुत तफसील से बात बताया गया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने समाजी जिंदगी और आयली जिंदगी, खानदानी जिंदगी की एक और बुनियाद बयान की, वो इस पर मगरब बहुत खराब पा है। आप तो इत्मीनान से 100 बार फख्र करके साथ के बयान कीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा کہ خاندان سے سماج بنتا ہے، شوہر اور بیوی کی ملاقات سے خاندان بنتا ہے، شوہر اور بیوی کے ملنے سے خاندان بنتا ہے، اور یہ جو خاندان کا یونٹ بنتا ہے، جو وحدت بنتی ہے، اس کا سربراہ کون ہو یہ سوال کرنا ہو. اس سوال کا ایک ہی جواب ہے اور یہی صحیح جواب ہے کہ اس میں سربراہی مرد تھی. تخلیقی طور پر وہ طاقتور ہے، حفاظت کر سکتا ہے، مدافعت کر سکتا ہے، کمانے کی قوت اللہ تعالیٰ نے اسے دی اور اس پر نان مکہ عورت کا واجب کیا، اس لیے اسی کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا. اور جہاں جہاں جن سوسائٹیوں میں یہ قوامیت ختم ہوئی ہے آپ دیکھیں گے سوسائٹیاں تباہ برباد ہیں. انہیں سوسائٹیوں میں اور انہیں خاندانوں میں امن رہا ہے، سکون رہا ہے، خوشگواری رہی ہے جہاں قوام مرد رہا ہے. اور قوام مرد جو بنتا ہے وہ دروغہ بننے سے نہیں بنتا، حفاظت کرنے سے بنتا ہے، خوش اخلاقی سے بنتا ہے، حق ادا کرنے سے بنتا ہے، ضروریات پوری کرنے سے بنتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایات ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں خرچ میں تنگی کرتا تو کفا بل مرے رسمن، اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے. حدیث میں کشادگی، سہولت، آسانی، خوشگواری، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اس کی تاکید حدیث میں آئی ہے. اور قوام کے معنی یہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نہ نفع خرچ کرنے والا، یہی معنی ہے. اس کے بعد عورت کو بتایا گیا جب تمہیں نانفقا بھی شوہر کی طرف سے مل رہا ہے، حفاظت بھی تمہاری ہو رہی ہے، تو عورتوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. پس صالحات قانتات، نیک بیویاں ہوں وہ ہوں گی جو اللہ سے تعلق رکھنے والی، اللہ کے آگے جھکنے والی، عبادت گزار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی عزت اور احترام کو حفاظت کرنے والی، شوہر کی عزت کو بڑھانے والی، ان کے رازوں کو حفاظت کرنے والی، وہ اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے، گھر کو اونچا اٹھانے کے لیے جو تدبیریں سوچے، جو شکلیں بنائے، جو کاروبار کرے، ان سب کے راز وہ محفوظ رکھتی ہے، یہ شریف عورت. اور اگر کوئی عورت بدخلاشی ہے، شرارت پسندی ہے، سرکشی ہے، تو اس کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس میں مغرب سے شرمانا نہیں چاہیے، سیدھی سیدھی فطرت کے مطابق باتیں ہیں جو اللہ نے بیان. اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے جو اس ملک کے لیے اور اس سماج کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کہا ہے کہ شوہر اور بیوی میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، مزاج نہیں ملتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو خاندان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے ایک آدمی اور لڑکے کے خاندان کی طرف سے ایک آدمی دونوں بیٹھیں اور دونوں کے مسائل حل کریں، یہ ضروری ہے، واجب ہے. آج جو جوڑے یہاں آئے ہیں ان کا نہ خاندان اس کا ہے نہ اس کا ہے، نہ عورت کا ہے نہ مرد کا ہے، وہ بیچارے کاؤنسلنگ کراتے پھرتے ہیں یا کسی امام شبلی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر قصہ بیان کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر خاندان نہیں ہے تو سوسائٹی کا اور کمیونٹی کا ہر بزرگ اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے और कहीं अगर उसे ये भनक मिले कि दो मियां बीवी में या जवान बीवी जोड़े में चचरा बाप है तो वो उसमें दखील हो, असरअंदाज हो, फिक्र करे उसे सुधारने की सवाल की। तमाशा देखने की बात नहीं है, सुनकर सच्चाई बयान करने की बात नहीं कि फलाम में इख्तलाफ हो गया, उसे दफा करने, रोकने, खत्म करने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी बनती है इस्लामी कम्युनिटी और इसमें बड़ी कोताही हो रही। चुनाचे आपको मालूम है कि यहां जो लोग आए हैं उनसे शरह तनाव हो गई और वजह यही है कि उन इख्तलाफात को, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कोई नहीं रहा। खानदान को बुजुर्ग रहे लेकिन यहां जो बुजुर्ग है वो काफिले को बुजुर्ग मानते नहीं, या वो लोग नहीं मानते बुजुर्ग, कोई कमी है हमारा, इसमें फिक्र होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो ये बात भी हो जाएगी। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक आयत है जिसके बारे में मिश्कात शरीफ में रिवायत आती है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद मुझे कुरान सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपको कुरान सुनाऊं, कुरान तो आपको नाज़िल हुआ। कहा हां मेरा जी चाहता है कि मैं कुरान सुनूं, तुमसे सुनूं। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब मैं इस आयत पर पहुंचा फकै फैदा जेना बिन कुल्ल उम्मत में शहीद व जेना बिगाला हावला शहीदा, ऐ अल्लाह के रसूल उस दिन क्या बनेगी, क्या कैफियत होगी जब हर हर उम्मत में से एक गवाह बनाकर लाया जाए जो उम्मत पर गवाही देगा। व जेना बिगाला हावला शहीदा, और ऐ मोहम्मद हम तुम्हें इन सारे लोगों पर गवाह बनाकर पेश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से कयामत तक जो इंसान पैदा हो रहे हैं ये सब उम्मत है अल्लाह के रसूल की। एक तो उम्मत इस्तिजाबत है जो मुसलमान है जो इस्लाम ले आए हैं वो उम्मत है, और एक उम्मत दावत है, ये सारे ईसाई अमेरिका में रहते हैं, ये उम्मत दावत है अल्लाह के रसूल की। इन तक दावत पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये दुनिया में जितने भी गैर मुस्लिम हैं सब उम्मत दावत है अल्लाह के रसूल, और इन तक बात पहुंचाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि जब मैं इस आयत पर पहुंचा मेरी निगाह उठी, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि ज़ार ख़ताब हो रहा है। उस दिन की कैफियत को याद करके कि मुझे गवाह बनाया जा रहा अपनी इंसानियत पर, जिनके डर से खौफ से लर्ज है, और ये जिम्मेदारी पूरी करने में आप काबू कर सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मामिन बनाया अल्लाह ताला, ये जिम्मेदारी पूरी की है। रहे महज कौमों की शिकायतें करना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने भी नहीं किया, ये नहीं किया, सवाल यह है कि आपने भी अपनी ड्यूटी पूरी की कि नहीं। बाहमा जौके आगही हाय पस्ती है बशर, बाहमा जौके आगही हाय पस्ती है बशर, सारे जहां का जाएगा अपने जहां से गया। आदमी दुनिया भर का जाएगा लेता है, फला ग्रह ने यूं किया, फला लोग यूं हैं, उनकी ये कोताहियां, उनके ये इख्तलाफात हैं, उनकी ये कमजोरियां हैं, ये खानदान क्यों कमजोर रहा है। सवाल ये है कि तुमने अपनी ड्यूटी अंजाम दी नहीं। और अगर हर आदमी यूं सोचने लगे कि मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दूं, पूछता हूं आपसे सोसाइटी समझ जाएगी नहीं। हर आदमी सोचे मैं अपनी ड्यूटी दूं अंजाम, अगर हर आदमी अपनी ड्यूटी अंजाम देने लगे पूरी सोसाइटी ठीक हो जाए। आदमी सोचता है कि दूसरे सुधर जाए, बड़ी खराबियां फैल गई इन सोसाइटी में, बड़ी खराबियां हैं, बड़ी बदमाशियां हैं, सरकशियां हैं, सुधरते ही नहीं लोग। हर एक की ख्वाहिश ये है कि दूसरा सुधरे, सवाल यह है कि आपका तो वजूद आपके अपने कब्जे में है, आप अपने कब्जे में जो वजूद है उसको सुधारिए, इंशाअल्लाह ताला दुनिया सुधर जाएगी। और आप सुधर जाएंगे तो लोग दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे, आपको इमाम बनाएंगे, आपको कायद बनाएंगे, आपको लीडर बनाएंगे, आपकी फिक्र में लग जाएंगे, आपके पीछे चलेंगे। जो लोग दुनिया की शिकायतें करते रहते हैं उनकी निगाहें नीचे कम जाती हैं, हालांकि लेकिन नुकते में इस्लाम है, यहां है अब तकवा, हा होना तकवा, आपने तीन बार फरमाया यहां है तकवा, यहां अपनी फिक्र करो। और जो शख्स अपनी फिक्र करने लगेगा पूरी सोसाइटी में सवाल है। इसके बाद फिर मुनाफिकीन का हाल बयान किया गया है, और मुनाफिकीन का हाल ही ने जो बयान किया गया उसमें ये बात कही गई है कि वो अल्लाह से तो ताल्लुक कुछ न कुछ कायम रखना चाहते हैं, ताल्लुक उनका टूटता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। निफाक की पहचान यहां से होती है, इसलिए कि इदात रसूल की नहीं करते, सरकशी यहां से करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बताया गया है, और दो आयतें मैं पढ़ता हूं बस बात खत्म करता हूं। एक आयत की अल्लाह ने फरमाई फला वाबे का लाल मनो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर गिज ईमान वाले नहीं हो सकते हत्ता हक मुंह कफी मां सजरवाई न हो, जब तक भारत ने हर तनाजे में हर मसले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अपना हकम न बनाए, फैसला कुन न बना। और फिर जो फैसला आपका हो उसको सरे तस्लीम खम कर, जरा बराबर दिल में तंगी न रहे। इसके बाद मैंने सऊदी अरब में एक बात देखी, शादी नहीं है वहां या समझ के लिए है, ताज में थे हम लोग, तो मैंने देखा कि दो आदमियों में लड़ाई हो रही, पहली बार देखी मैंने अरब में लड़ाई, और कल इनने कल कह रहा था मुझे कुत्ता कह रहा था, मुझे कुत्ता कह रहा, लड़ाई हो रही जोर शोर से। एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद, एक शख्स अपने रास्ते पर चला गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना करा। ये मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा, तनाजा हमारा हो, मसला हो, प्रॉब्लम हो, कोई फैसला ना हो रहा हो, हदीस आ जाए तो सहन फिर तस्लीम खान कर लो, मन कुरान की आयत आ जाए मन खत्म हो जाए। लेकिन अगर कुरान की आयत सुनने के बाद भी हदीस सुनने के बाद भी आप ये कहें कि बात ठीक है मगर मैं ये सोचता हूं, ये सोचने का क्या आप है, मुसलमान है तो अल्लाह के रसूल का हुक्म आने के बाद तुझे सोचने का हक है क्या, किसी को कुछ सोचने का नहीं, रसूल ने फैसला कर दिया हो गया। इसलिए अल्लाह ने ताला में ये कहा कुरान में इस पूरे जमीन पर अल्लाह की इताअत करने का भी एक ही तरीका है, मैं यह रसूल अकबर काम था, रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत हो सकेगी, अल्लाह की इताअत का भी कोई और तरीका नहीं, अल्लाह के हुक्मों पर चलने का एक ही तरीका है रसूल की सुन्नत पर। मैंने अभी अर्ज किया था कि दो तबके बहुत कमजोर थे, उनको अल्लाह ताला ने बताया कि इनकी निगाहदाश्त करो। आखिरी बात ये बताई है कि इंसान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया फजदा हूं जहन्नम, तो उसकी सजा जहन्नम है, खालदन फीहा, वो हमेशा हमेशा सुन रहे, वह गज़ब अल्लाह वाले अल्लाह उस पर गज़बनाक रहे, वलाना है और उस पर लानत भेजता है। सब अल्फाज याद रखिए, जहन्नम में दाखिल करेगा, गजबनाक रहेगा, लानत भेजता रहेगा, वाद नहूं मजाक मजीमा, उसकी बहुत सख्त अजाब तैयार है। वो दीन जो यतीमों के साथ ये सलूक करे, वो दीन जो खवातीन के साथ ये सलूक करे कमजोर तबका है, वो दीन जो एक इंसान के कत्ल को इतनी अहमियत दे, उस दीन से ज्यादा हम पसंद दीन उस दिन से ज्यादा सलामती का दिन कोई हो सकता है? मगर हम आज मगरिब के प्रोपेगेंडे के नतीजे में इस मुकाम पर खड़े हैं कि ये मुदाफात करते हुए नजर आते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। दुनिया अगर दहशतगर्दी से बच सकती है तो उसकी एक ही शक्ल है कि वो इस्लाम के दामन में पनाह ले। इस्लाम ही बचा सकता है दहशतगर्दी, इसलिए कि कमजोर से कमजोर तबके का इस तरह अभ्यास किया है। हल यह है कि अगर कोई सोसाइटी का कमजोर इंसान कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ताकतवरों ने अगर कत्ल किया है कमजोर कमजोर से कमजोर वक्त किसी इंसान को, तो यह न समझा जाए कि उसका कोई उसकी कोई मददगारी नहीं करेगा। इन्नहू काना मंसूरा, समाज उसके साथ नुसरत करेगी, इंसान उसके साथ नुसरत करेंगे, हुकूमत नुसरत करेगी, सब मददगार होकर खड़े होंगे, हुकूमत उसके लिए मुद्दई होगी। तो जो दीन इंसानी जान को इतना मोहतरम जानती हो, कमजोर तबकों पर इतना असर करती हो, उस दीन को आप मकाम हम आज ये है कि हम ये सफाई पेश कर रहे हैं कि टेररिस्ट नहीं, हम टेररिस्ट नहीं। हालांकि बात यह है कि दहशतगर्दी से बचने का वाहिद तरीका यह है कि ईमान लाया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर दिए गए। बिलासुदो हमने कुछ लोग मुसलमान हैं, सरकश भी हो गए होंगे, गलतियां भी कर रहे होंगे, लेकिन किसी एक मुसलमान की गलती करने से इस्लाम पर जर आए ही कहां की असंबंधी। और क्या दुनिया के सारे मुल्क दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं? रियासत की सतह पर दहशतगर्दी हो रही है, हुकूमत की सतहों पर दहशतगर्दी हो रही है। गुजरात में क्या नहीं किया गया? हुकूमत की सतह पर मुनज्जम दहशतगर्दी की गई, नस्ल खुशी की गई मुसलमान। एक मंदिर में दो आदमी घुस गए थे, एक 18 साल का था, एक शायद 25 साल का था। हमारे बहादुर फौज में दो बटालियन थी, रात भर जंग थी उन दो आदमियों से, बड़ी बहादुरी से जंग थी। रात के 7 बजे से सुबह 4 बजे तक गोलाबारी हो चुकी और उन्होंने कहा कमांडर ने कि हमने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उनको निकलने नहीं दिया। रात के 4 बजे मालूम नहीं कैसे हो मंदिर के दरवाजे से निकल के जन झाड़ियों में चले गए। झाड़ियों में उनका पीछा करना हमने इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि अंधेरा खतरा था वहां, इसलिए हमने उनका मुकाबला नहीं किया, पीछा नहीं किया। सुबह रोशनी फैलते ही पहली फुर्सत में हम उनके पीछे गए और हमने उस वक्त तक जब तक उनको मार नहीं गिराया उस वक्त तक दम नहीं दिया। आप और कीजिए कि वो दो आदमी दहशत करते और उसके बाद अरमानी ने बयान दिया ये दहशतगर्द दो जो आ गए थे पहले तो कश्मीर में हुआ करते हैं, अब यहां तक उनकी गद आने लगी है और होंगे यहां ये और होंगे, और उसके बाद थोड़े दिनों के लिए कुछ सुकून हो गया। ये कौम गुजरात की बात को दहशतगर्दी नहीं कहती, बेशक ये भी गलत है, कौन इसे करेगा, लेकिन तंग आमद बजंग आमद बिजली को आप हर तरफ से घेर लें कुत्ते हम लगा देती हो, ऐसा होता है, जान तो बचाएगा। और जब आदमी के पास कोई हथियार ना रहे, कोई जरिया ना हो, कोई हथियार ना हो, तो उसका सही उसकी उसका हथियार होता है, उसका जिसम उसका हथियार होता है, आप पहले हथियार होते। तो सूरत हाल यह है कि ये जो सूरत मैंने आज की बयान की, इस सूरत में इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू की गई है और जिस अंदाज से जान की कीमत बताई गई है, उसकी अहमियत महसूस कराई गई है, कमजोर से कमजोर तबकों के हुकूक बयान किए गए हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती کہ اسلام کے بارے میں ہم صفائی پیش کریں, ہمیں مثبت بات کہنا چاہیے, پازیٹو بات کہنا چاہیے کہ دہشت گردی سے بچانے والی کوئی چیز اگر ہے تو اسلام ہے, ایمان ہے. یہ مسجد ہے, مدرسہ, دو چیزیں دہشت گردی سے بچا سکتی ہیں, جن کو تم نے نشان بتایا. وآخر دعوانا الحمدللہ.